और यहाँ निष्ठा पर भक्तों का संग प्राप्त होना भी ஆகவே கஷ்டம். எத்தனை சம்சார में बहुत सारे भगवान के भक्त देखे जाते हैं, किंतु उनकी कोटियां भिन्न भिन्न तरह तरह के भक्त। कोई भक्त सकाम भक्त है, वो भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहा है कुछ कामना को लेकर, कामना की पूर्ति के लिए, तो ऐसे भक्तों को सकाम भक्त कहा है। कुछ निष्काम भक्त भी है जिनकी कोई भौतिक कामना नहीं, एकमात्र कामना भगवान को प्रसन्न करना। तो ऐसे भक्त जो है निष्ठा पर भक्त है, उनका संग प्राप्त करना बहुत कठिन है, और विशेष रूप से कलयुग में बहुत कठिन है। और ऐसे निष्ठा पर भक्तों के संग में भक्ति का अभ्यास किया जाता है तो व्यक्ति अति शीघ्र भक्ति की उच्चतम स्थिति को, प्रेम को प्राप्त हो सकता है। किंतु यदि ऐसे निश्चल भक्तों का संग प्राप्त नहीं है तो भक्ति आचरण करने में बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि जब भक्त निष्काम नहीं होता है तब तो एक कामना ही होती है, इसका अर्थ है कि उसका कुछ स्वार्थ रहेगा, और जब स्वार्थ में कोई बाधा उत्पन्न होती है वहां भक्त भक्तों में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। ये सब भक्ति की बाधा है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं। तो उच्च कोटि के निष्ठावान भक्तों का संग हमारे काम है, ऐसे जो सकाम भक्त है उनका संग हमारा काम नहीं। ऐसे भक्तों से दूर रहना है जो सकाम भक्त, जिनकी भौतिक कामना है, उनसे दूर रहना यदि हमें निष्ठावान भक्ति करना है। कामना रहित होकर भक्ति करना है तो ऐसे भक्तों से दूर रहना, अन्यथा हम उनके द्वारा प्रभावित हो जाए। तो यहां वैकुंठ पार्षदगण कहते हैं कि वैकुंठ में कोई बाधा नहीं है, भक्ति करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, और वहां पर ना संपत्ति के निर्विघ्न तप निश्चय हो। और वैकुंठ में जितने भी भक्त हैं सब निष्ठावान भक्त, भक्ति में सबकी निष्ठा है, सब उनकी कोई कामना नहीं है भौतिक कामना, क्योंकि भौतिक कामना होने पर कोई वैकुंठ प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उनकी संभावना भी वहां नहीं। अर्थात वैकुंठ में जो भक्तगण है निर्विघ्नता पूर्वक बिना बाधा के निष्ठावान भक्तों के साथ भक्ति का आचरण कर सकते, और यही कारण है कि निष्ठावान भक्त लोग वैकुंठ की कामना करते हैं। यदि भौतिक संसार में भी भक्त कर सकते हैं किंतु यहां ये सब निष्ठावान भक्तों की कमी और बाधा विघ्न अनेक, इसलिए वैकुंठ भक्तों का प्रार्थ है। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं उस वैकुंठ की प्राप्ति के लिए। तो यह कहकर वैकुंठ पार्षदगण गोप कुमार के मन में उन वैकुंठ धाम की यात्रा करने के लिए प्रेरित कर रहे। तरा चेत विद्यते श्रीमद वैकुंठ लोकमेत सर्वाभीष्ट कर श्रेष्ठ तान श्री व्रज भगवान। तो वैकुंठ पार्षद कह रहे हैं गोपकुमार से, वो लोग इस प्रकार अति शीघ्र उस वैकुंठ धाम को प्राप्त हो सकते हैं या वैकुंठ धाम की यात्रा कर सकते हैं अति शीघ्र। अन्यथा गोप कुमार के लिए ये अवसर उपलब्ध था क्योंकि वो शिव जी का दर्शन कर रहे थे मुक्ति धाम महागौरपुर में, शिव जी वहां उपस्थित थे पार्वती देवी के साथ और शिव जी की कृपा गोप कुमार के ऊपर थी। तो यदि शिव जी का आशीर्वाद गोप कुमार को प्राप्त है तब गोप कुमार शिव जी के साथ उनके धाम में ले जा सकते हैं जो शिव का अपना धाम शिवलोक। अब शिवलोक से क्योंकि शिवलोक में शिव जी अपने भक्तों को भक्ति की ही शिक्षा देते हैं, सभी को नाम संकीर्तन में नियोजित करते हैं, तो वहां से शिवलोक से गोप कुमार के लिए वैकुंठ धाम जाने का रास्ता सुगम हो जा सकते थे शिवलोक से वैकुंठ धाम, किंतु इसमें समय लगता। ये पहले शिवलोक जाएंगे फिर शिवलोक से पुनः वैकुंठ धाम जाएंगे, शिव जी की जब कृपा होगी उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा पुनः वैकुंठ धाम जाएंगे। इसलिए ये वैकुंठ भगवत पार्षद गण ये गोप कुमार से कह रहे हैं कि त्वरा अर्थात अतिशीघ्र चेत सिद्धते श्रीमद् वैकुंठ अवलोकन कर। यदि आप वैकुंठ का अवलोकन करना चाहते हैं अतिशीघ्र या वैकुंठ का अतिशीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है तो कहते हैं सर्वाधिष्ट प्रद श्रेष्ठ सर्वाधिष्ट प्रद श्रेष्ठ तान श्री ब्रज भूम। ये जो ब्रज भूमि है ये सर्वाधिष्ट प्रद है, सर्वाधिष्ट अर्थात सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में ये ब्रजभूमि सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि ये बताया कि दूसरे धाम में भी इच्छा की पूर्ति हो जाती है किंतु ब्रजभूमि को सर्वाभिष्ट प्रद श्रेष्ठ भूमि बताया गया। व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में ये ब्रजभूमि श्रेष्ठ है। यहां व्यक्ति जो कोई भी कामना करता है उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए वैकुंठ के भक्तगण गोप कुमार से कह रहे हैं कि यदि आप अतिशीघ्र वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं तो आप जिस ब्रजभूमि से आप आए हैं इतनी दूर भक्ति धाम में तो आपको फिर वही जाना पड़ेगा ब्रजभूमि, क्योंकि ब्रजभूमि सर्वाधिष्ट पद है और स्वस्थ भूमि। तो गोप कुमार सोच सकते हैं कि ब्रजभूमि से हम कितना परिश्रम करके स्वर्गलोक आया फिर महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक उसके बाद ये अस्त आवरण भेद करके ब्रह्मांड के और मुक्ति धाम में आया है और वैकुंठ यहाँ से नजदीक है बहुत पास है, केवल शिवलोक है और शिवलोक के ऊपर वैकुंठ धाम। किंतु ये भगवत पार्षदगण कह रहे हैं कि अब आपको पूरा जाना पड़ेगा नीचे ब्रजभूमि में, ये सब जो पार करके आए हैं इतना कष्ट करके अब पुनः जाना पड़ेगा नीचे ब्रजभूमि। इसलिए उनको आश्वस्त कर रहे हैं ये भगवत पार्षद कहते हैं सर्वाभिष्ट प्रद श्रेष्ठ श्री व्रज भगवान ये ब्रजभूमि सर्वाभिष्ट प्रद है इसलिए आपको वो वही जाने पर आपकी ये बैकुंठ जाने की जो इच्छा है ये तुरंत पूर्ण हो जाए। परम स्मरण पदम भोज सदा संग की अपेक्षा नाम संकीर्तन प्रायण विशुद्धं भक्ति नाचर। यदि आप स्मरण पदम भोज भगवान के जो चरण कमल है उस चरण कमल की संगति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं या चरण कमल का संग या आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम संकीर्तन प्राय विशुद्धं भक्ति मार्ग। तो यह नाम संकीर्तन रूप जो भक्ति कल हम नवदा भक्ति की चर्चा कर रहे थे जिसमें भगवान के नाम गुण कीर्तन ये भक्ति की विधि और विशेष रूप से ये वैकुंठ के पार्षदगण नाम संकीर्तन के ऊपर बल दे रहे कि नाम संकीर्तन रूप जो विशुद्ध भक्ति आप उसी भक्ति का आचरण किया। ये विशेष रूप से बता रहे पहले तो बता दिया कि नौ प्रकार की विधि है आप नौ प्रकार की विधि भक्ति विधि का आचरण कर सकते हैं या कोई एक का भी आचरण कर सकते हैं। आप नौ प्रकार की विधि का आचरण करके भी भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं या एक विधि का आचरण करके भी भगवत धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि कोई कहेगा इतनी सारी विधियों का कौन आचरण करता है इसमें ये बहुत कष्ट साध्य है हम एक विधि चाहिए सर्टकट चाहिए एक विधि आचरण करके हम कैसे भगवत धाम को प्राप्त हो जाए। तो कोई भी विधि आचरण करके व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त हो सकता है तो नौ प्रकार की भक्ति से किंतु विशेष रूप से ये भगवत पार्षदगण नाम संकीर्तन रूपक जो भक्ति की विधि है उसको आचरण करने के लिए कह रहे कि नाम संकीर्तन प्राय विशुद्धं भक्ति आचरण नाम संकीर्तन रूपक जो विशुद्ध भक्ति है इसका आप आचरण कीजिए क्योंकि ये नाम संकीर्तन करने से क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है इसलिए नाम संकीर्तन जब हम करते हैं उच्च स्वर से एकदम जप करते हैं माला में उसको जप कहा जाता है संकीर्तन उसको कहा जाता है जब हम सब मिलकर उच्च स्वर में भगवान का नाम कीर्तन करें उसको नाम संकीर्तन कहा है। और ये नाम संकीर्तन ये व्यक्ति को विशुद्ध करने में समर्थ है चाहे कोई पापी पुरुष हो कोई सोचेगा कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं हमने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं किंतु हर तरह का व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में समर्थ है और उसकी सरल विधि है चाहे कोई पापी पुरुष भी क्यों ना हो ये नाम संकीर्तन रूप भक्ति का आचरण करने पर वो शुद्ध हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अपिचेत दुराचारो भजन्ते मम अनन्यः साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितः। अत्यंत दुराचारी पुरुष भी यदि अनन्य रूप से भगवान कृष्ण का भजन करता तो क्षिप्रण भवति धर्मार्थ वो अतिशीघ्र धर्मार्थ बन जाता है दुरात्मा से वो धर्मात्मा बन जाता है, और वही व्यक्ति साधु पदराज से हो जाता, साधु कहलाने योग्य हो जाता। अतः यदि कोई पापी पुरुष भी बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, उसका पिछला जीवन ठीक नहीं है, किंतु सत्कार करके यदि वो एकांत रूप से भगवान कृष्ण की शरण में आता है और उनकी भक्ति आचरण करता है, उनका भजन करता है, नाम संकीर्तन करता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो अतिशीघ्र वो धर्मात्मा बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते, नष्ट हो जाते, तो शुद्ध बन जाता। इसलिए जो साधु भक्त हैं, ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाता है, जो अनंत रूप से भगवान कृष्ण का भजन करता है। तो साधु व्यक्ति का इसलिए पिछला जीवन नहीं देखा जाता, जैसे वाल्मीकि हुए, कहा जाता है कि पिछले जीवन में वो डाकू थे, किंतु कोई ये नहीं कहता नहीं तो डाकू है, ये साधु नहीं है, उसके पूर्व जीवन को भूल जाता है। यदि कोई भगवान के भजन में मग्न है और शुद्ध हो चुका है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कृष्ण कर साधु ले को समान कर ले, ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए, उसको पापी या डाकू नहीं मानना चाहिए। तो कहते हैं नाम संकीर्तन प्राय विशुद्धां भक्ति मात्र, तो नाम संकीर्तन रूप ये जो भक्ति है ये व्यक्ति को अतिशीघ्र शुद्ध करने वाला। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, जिन भगवान का नाम संकीर्तन व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट कर देता है। प्रणाम दुख समान, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, प्रणाम मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत है, ऐसे शरणागत भक्त का सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसको कर्म का फल भोग करना नहीं पड़ता, जब तक वो न चाहे कर्म का फल भोग करने के लिए। यदि कोई चाहेगा कर्म का फल भोग करने के लिए फिर वो भोग करेगा, किंतु यदि कोई नहीं चाहता है तो सारे कर्म के फल नष्ट हो जाते, उसको दुख भोग करना नहीं पड़ता, यहां तक कि प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता। भक्त का प्रारब्ध कर्म जो अभिच्छा हुआ है जिसका फल मिल रहा है वो नष्ट हो जाता, किंतु जो भक्त नहीं है अकस्मात उनके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है, या अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम ले लेता है, और ऐसा करते हुए अपराध नहीं करता, नाम बला पाप बुद्धि, ये नाम के बल पर पाप करना ये अपराध नहीं करता, ये नाम लेने से हमारे पाप नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार नहीं सोचता। यदि ऐसे व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उससे भी सारे पाप दूर जाते हैं, केवल प्रारब्ध कर्म को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति प्रारब्ध कर्म को भोग करेगा, किंतु जो समर्पित भक्त है उसके लिए प्रारब्ध कर्म में नष्ट हो जाता। तो इस प्रकार शीघ्र इस प्रकार गोकुमार भगवान का नाम संकीर्तन जो व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करके उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाला नाम संकीर्तन, उसके सारे पाप धुल जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय द्रवीभूत होकर उसमें प्रेम कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये नाम संकीर्तन का ये प्रभाव है। और ये नाम संकीर्तन केवल जो नाम संकीर्तन करता है उसके ऊपर केवल असरदार नहीं होता, जो व्यक्ति सुनता है वो भी पापों से मुक्त हो जाता, केवल सुनकर भगवान का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर से कि इस कलयुग में संसार के लोग पाप कर्म में लिप्त रहते हैं तो इनका कैसे उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु आपने जो नाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया है इस नाम संकीर्तन के प्रभाव से सारे लोग पाप कर्मों से मुक्त होकर आपके धाम को प्राप्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ठीक है ये नाम संकीर्तन तो मनुष्य ही कर सकता है किंतु जो पशु पक्षी है पेड़ पौधे हैं उनका उद्धार कैसे हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये पेड़ पौधे पशु पक्षी यद्यपि नाम संकीर्तन नहीं कर सकते किंतु आपने जो उच्च नाम संकीर्तन प्रवर्तन किया उच्च स्वर से जब भक्त लोग आपका नाम कीर्तन करते हैं और ये पशु पक्षी पेड़ पौधे उसका श्रवण करते हैं ये श्रवण मात्र से उनका भी उद्धार हो जाए। तो ये नाम संकीर्तन का प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, जो व्यक्ति इसका उच्चारण करता है जो व्यक्ति श्रवण करता है सभी इससे लाभान्वित होते हैं पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो अजान ने जब नारायण का नाम लिया तो भगवान का नाम नहीं कह रहा है, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था जिसका नाम नारायण है, किंतु उसने अपराध नहीं किया था इसलिए नामावास के रूप में वो मुक्त हो गया यमदंड। तो ये नाम का जो प्रभाव है ये वैकुंठ के अधिवासी गण कहते हैं अतिशीघ्र यदि आप वैकुंठ जाना चाहते हैं तो आप ये विशुद्ध नाम संकीर्तन करें। पुनः कहते हैं नाम संकीर्तन प्रोक्तन कृष्णस्य प्रेम संसर्ग। तो भगवान का ये जो नाम संकीर्तन है ये भगवान के प्रेम संपत्ति ही है। तो ये नाम संकीर्तन कहां से आया है, गोलोक प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन रति नाम मिलक का। तो ये गोलोक का प्रेमधन है हरि नाम संकीर्तन, गोलोक में भी ये हरि नाम संकीर्तन चलता रहता है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम कीर्तन करते हैं ये गोलोक में भी यही कीर्तन होता रहता है। एक तो गोलोक वृंदावन का जो दूसरा प्रकोष्ठ है चैतन्य महाप्रभु उसमें तो हरिनाम संकीर्तन करते ही है, यहां तक गोलोक वृंदावन में गोपियां भी हरिनाम संकीर्तन करती रहती। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन में ही चलता। तो ये गोलोक से चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं हरि नाम संकीर्तन, लोग पूछते रहते हैं ये कहां शास्त्र में है। कहते भी हम कहते हैं कलि संतरण उपनिषद, तो ये गोलोक का वस्तुतः मूल रूप से गोलोक का प्रेम है, ये गोलोक से आया। इसलिए भगवान की ये प्रेम संपत्ति है, ये हरिनाम संकीर्तन भगवान की प्रेम संपत्ति है। और जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है उस प्रेम संपत्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये वैकुंठ के दूतगण कह रहे हैं नाम संकीर्तनम प्रोक्तम कृष्ण से प्रेम संपत्ति। कृष्ण की जो प्रेम संपत्ति है ये नाम संकीर्तन के रूप में कथित है, प्रोक्त है। बलिष्ठम साधनम श्रेष्ठ, और हर तरह के साधनों में से सबसे शक्तिशाली साधन ये हरिनाम संकीर्तन। इसका अर्थ है कि नवदा व्यक्ति के जो अन्य प्रकार की भक्ति है उनमें से ये श्रेष्ठ साधन बताया जाए, बलिष्ठ साधन। परमाकर्ष मंत्र, जिस प्रकार मंत्र के द्वारा हम आकर्षित कर सकते हैं दूसरी वस्तु को या व्यक्ति को। कभी कभी लोग मंत्र के बल पर किसी को वशीभूत कर देते हैं, आकर्षित करते हैं। एक वशीकरण विद्या है, मंत्र के बल पर वशीकरण विद्या का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भी बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है। और ये किसको वशीभूत करता है? स्वयं ब्रजनंदन कृष्ण। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि यही उनकी प्रेम संपत्ति है। और जब कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं तो जो व्यक्ति महामंत्र का उच्चारण करता है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपना प्रेम संपत्ति उसको दान कर देते हैं। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने का ये सुगम मार्ग है और बलिष्ठ साधन। यदि हमें अति शीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में बताया गया है एवं प्रियनाम कृत्या जातानुराग चित्त रुचि। जब व्यक्ति भगवान का प्रिय नाम का कीर्तन करता है, भगवान के अनेक नाम है, कुछ प्रत्यक्ष नाम है कुछ परोक्ष नाम है। और प्रत्यक्ष नामों में भी कुछ भगवान के प्रिय नाम है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं नामना मुख्यतम नाम श्रीकृष्णाख्य परंतर। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मेरे समस्त नामों में जो मुख्यतम नाम है, मुख्य नाम नहीं कर मुख्यतम नाम है वो है श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण नाम सभी को आकर्षित कर सकता है, भगवान कृष्ण इस नाम के द्वारा सभी को आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करके क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। और श्रीमती राधारानी इस नाम की महिमा बताते हैं। तुंडे कान कदि निरतिं वितनुते तुंडा वरि लभते। श्रीमती राधा कहते जो कृष्ण के जो दो अक्षर वाला नाम है ये इतना मधुर है, जब हम अपनी जिह्वा से उस नाम का उच्चारण करते हैं तो ये जिह्वा से हम संतुष्ट नहीं है इस नाम का उच्चारण करते। क्योंकि जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं ये कृष्ण नाम हमारे जिह्वा पर ये नृत्य करने लगता है। तुंडे तांडलिनी रति ये तांडव नृत्य करता है कृष्ण नाम हमारे जिह्वा पर, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं और कृष्ण भी कृष्ण का नाम तांडव करता है तांडव। इसलिए श्रीमती नारायण कहते हैं कि एक जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण करने में हम संतुष्ट नहीं है, हमें तुंडारों में लब है, अनेक तुंड अर्थात अनेक मुख अनेक जिह्वा हमें एक साथ चाहिए, हम एक जिह्वा से भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण करने में समर्थ नहीं है, हम चाहते हैं अनेक जिह्वा जिह्वा में कृष्ण का नाम हम उच्चारण करते रहे, इतना मधुर नाम। तो ये कृष्ण का नाम इतना मधुर नाम है, इसलिए स्वव्रत प्रिय नाम कृत्या जातानुराग चित्त उच्चे। जब ये प्रिय नाम व्यक्ति उच्चारित करता है भगवान का प्रिय नाम जो मुख्य नाम मुख्यतम नाम जो कृष्ण को वशीभूत करने वाला, क्योंकि भगवान के सारे नाम उनकी लीलाओं से संबंधित है, कार्य कार्य से संबंधित है, तो भगवान के नाम इस प्रकार उच्चारण करने से जाकानुराग दुर्दचित होते। जब हम उच्च स्वर में भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे पाप को दूरीभूत हो जाते हैं, किंतु जाता अनुराग उस कृष्ण नाम के प्रति हमारे हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता, आसक्ति उत्पन्न हो जाती और हसती अथ रोदती रहती गायती उन्माद नृत्यती लोक आय। और जब कृष्ण नाम के साथ अनुराग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और हम अधिक से अधिक उच्च स्वर में भगवान का नाम कीर्तन करना चाहते हैं तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और हृदय द्रवीभूत होकर हृदय में जब कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय हमारा बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है और बाह्य ज्ञान लुप्त होने पर हम कभी हंसते हैं कभी रोते हैं और कभी गाते हैं और कभी उन्माद व्यक्ति की तरह पागल व्यक्ति की तरह नृत्य करने लगते हैं। ये नाम का प्रभाव नाम संकीर्तन का इस प्रकार प्रभाव होता है। इतना बलिष्ठ साधन इसलिए कहा गया तो बैकुंठ के दूतगण गोप कुमार से इस बलिष्ठ साधन जो नाम संकीर्तन है उसका अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि वो अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम को प्राप्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो। इच्छा वसत पापं उपासकानं क्षियते भोगं मुखं अपि अमुंसा। तो ये बैकुंठ दूतगण कह रहे हैं कि जो उपासक गण है अर्थात भक्त गण है जब इस प्रकार नाम संकीर्तन करते हैं तो उनके सारे पाप धूल जाते हैं नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि भोग उन्मुख पाप या प्रारब्ध कर्म है सभी धूल जाते हैं नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध मात्र भवती इतरेश कर्मावशिष्ट तद अवश्य भव्य। हम बता रहे हैं इसके बारे में अभी किंतु जो भक्त नहीं है ये भी किसी तरह अवहेलना पूर्वक हो, अज्ञानता वशत हो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो उनका प्रारब्ध कर्म केवल रह जाता है, बाकी सर्व नष्ट हो जाता है, उनको केवल प्रारब्ध कर्म भोग करना पड़ता है। किंतु भक्तों के लिए जो पूर्ण समर्पित भक्त है उनके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भक्तों का भी सारा कर्म नष्ट नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म रह जाता है, तो ये प्रमाण है, ये श्लोक प्रमाण है कि भक्तों का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, कोई कर्म नहीं रहता, बाकी नहीं रहता। यदि भक्त चाहेगा कोई कर्म भोग करने के लिए विनम्रता वश, वो अलग बात है, वो भोग करेगा, किंतु भगवान का नाम जप करने से कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उनका प्रारब्ध कर्म रह जाता है। तो माया के लोग भी यही कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म कभी नष्ट नहीं होता है, तो वो इन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जो भक्त नहीं है, उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता, बाकी कर्म नष्ट हो जाते। तत्नाम संकीर्तन मात्र तो अखिला भक्ता हरेश शूर हतदुख दूषण केचि तथा प्रभुवत कृपाकुला लोकान सदाचारण इमं प्रशस्य। तो भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से अखिल दुख दूषण, भगवान हरि के नाम संकीर्तन मात्र से भक्त के अखिल दुख अर्थात सारे दुख दूषण ये सब नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, दुख भी नष्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि महान भक्तगण भी दुख भोग करते हैं, तो ये कैसे है, जैसे पांडव गण ये सब भगवान के परम भक्त थे, शुद्ध भक्त, उनके कोई पाप कर्म नहीं थे, फिर भी उनको दुख भोग करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी भगवान जगत को शिक्षा देने के लिए भक्तों का उपयोग करते हैं। ये पांडवों का पूर्व जन्म अर्जित पाप कर्म का फल नहीं, पांडव जो दुख भोग कर रहे थे ये उनके पूर्वजन के कर्म का फल नहीं है, ये भगवत इच्छा से वो इस प्रकार दुख भोग कर रहे थे जगत को शिक्षा देने। वो प्रसंग आएगा अभी। तो जो शुद्ध है भक्तगण ये वस्तुतः अपने पाप कर्म के अधीन नहीं, उनके पाप कर्म नहीं रहते, किंतु कृष्ण की इच्छा से वो दुख भोग करने के लिए प्रस्तुत रहते, कृष्ण जैसे रखते हैं। तो कहते हैं कि केचि तथा प्रभुवत कृपा कुला लोकान सदाचारण इमं प्रशासित। तो कहते हैं कोई कोई भक्त जो भगवान के समान कृपा कुला, क्योंकि भगवान बहुत कृपामय है, भगवान दूसरों का दुख देख नहीं सकते, दूसरों का कष्ट नहीं देख सकते, कृपा करते हैं, बहुत कृपा है, उसी प्रकार उनके जो भक्त जन होते हैं ये भी कृपामय होते हैं, तो दूसरों पर कृपा करते हैं, दूसरों का कष्ट नहीं देखते। तो कभी कभी ये भक्त जन जानबूझकर ये कष्ट को वर्ण करते हैं, संसार में सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए, संसार के लोगों को ये शिक्षा देने के लिए, कभी कभी शुद्ध भक्तगण भी कष्ट को भोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, कहते हैं दुष्ट दोषं भरतादयो यथा, जैसे भरत महाराज की कथा में जानते हैं, महाराज भरत जो कि सम्राट थे इस पृथ्वी के और राज ऐश्वर्य में थे, युवावस्था में उन्होंने राज्य त्याग दिया। जहो जुवे महाभारत उत्तम श्लोक महाभारत, तो युवावस्था में भरत महाराज उन्होंने पत्नी पुत्र कन्या परिवार आत्मीय स्वगन राज्य राज ऐश्वर्य इन सभी को त्याग दिया था। किसके लिए त्याग दिया था? उत्तम श्लोक महाराज, क्योंकि उत्तम श्लोक भगवान की सेवा की लालसा के कारण, भगवान की सेवा करने की तीव्र लालसा तीव्र इच्छा के कारण ये जो दुष्ट जीव दारासुत सुहृद राज्य हृदय स्पर्श जहो जुबे मलगत उत्तम श्लोक लालस, ये व्यक्ति का पत्नी को त्यागना, पुत्र कन्याओं को त्यागना, आत्मीय स्वजनों को त्यागना, ऐश्वर्य को त्यागना, ये दुष्ट जीव त्यागना बहुत कठिन। साधारण रूप से कोई व्यक्ति इसको त्याग नहीं सकता, वो इतना आसक्त रहता है इन पर। किंतु भरत महाराज ने युवावस्था में, हाँ वृद्धावस्था में त्याग दिया ठीक है, फिर भी ऐसे बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति हैं संसार में, वृद्धावस्था में भी त्याग नहीं सकते परिवार, कष्ट वो करते रहते फिर भी पड़े रहते। तो वृद्धावस्था में कोई यदि त्याग करता है ठीक है, किंतु भरत महाराज ने युवावस्था में त्याग दिया, क्योंकि भगवान कृष्ण की सेवा की जो तीव्र वालसा उनमें उत्पन्न हुई थी उसके कारण युवावस्था में उन्होंने ये सब तुच्छ जहो युवे मलव मल के समान उन्होंने त्याग दिया। जैसे हम मल त्याग करने जाते हैं, मलत्याग करने के पश्चात हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने त्याग किया हमारे शरीर से बहुत अच्छी चीज, ये हम नहीं सोचते, हम देखते भी नहीं मलत्याग के पश्चात। तो भरत महाराज ने मल के समान इन सारे ऐश्वर्यों को परिवार को अपने स्वजन को त्याग दिया भगवान की सेवा करने के। तो ऐसा किस लिए किया और उनकी उनकी अवस्था क्या हो, हम लोग जानते हैं कि भरत महाराज ने इतना बड़ा त्याग किया भगवान की सेवा के लिए, किंतु अंत में क्या हुआ, एक मृग सावक के संस्पर्श में आकर उसकी रक्षा के लिए वो इतने व्यस्त रहे कि भगवान की सेवा बजा उनकी बंद हो, और अंत में वो भगवान का स्मरण करने के स्थान पर उस मृग शिष्य का स्मरण करने लगे कि मेरे बिना ये कैसे जीवित रहेगा। भरत महाराज सोचने लगे, उनको यह ध्यान नहीं आया कि जो भगवान प्राणियों को जन्म देते हैं, प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, वही भगवान सभी का पालन पोषण करेंगे, वो भूल गए इस बात। उन्होंने सोचा कि मेरे बिना ये जीवित नहीं रह सकते, अर्थात उन्होंने भगवान का पद ले लिया कि मेरे बिना ये जीवित नहीं रह सकते। और यही कारण था कि उस मृग शिशु के बारे में सोचते सोचते उन्होंने प्राण त्याग दिए। और दूसरे जन्म में वो मृग शिशु बनकर उनका जन्म हुआ, क्योंकि मृग का स्मरण कर रहे थे मृत्यु समय। और भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काल समान स्मरण भाव या कि मृत्यु के समय जो जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को प्राप्त होता है। कोई भगवान का स्मरण करेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, मृग का स्मरण कर रहा है तो भरत नारायण मृग शिशु बनकर जन्म। हम परिवार के स्मरण करेंगे मृत्यु के समय तब उस परिवार में प्रभुपाद जी कहते हैं कभी सांप कभी शिशु या कोई कुत्ता और उस परिवार में जन्म लेंगे। यदि हम आसक्त होंगे परिवार को घर के प्रति तो ये हमारे आसक्त कहां पर है इस पर निर्भर करता है कि हमारी गति क्या हो। यदि हम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हैं कृष्ण को प्राप्त हो, और भौतिक संसार के प्रति आसक्त हैं पुनः फिर यही जन्म, थोड़ी सी भी आसक्ति हमें फिर पुनः यहां ले आए। तो भरत महाराज को और दो जन्म लेना पड़ा मुक्त होने के, एक तो मृग शिशु का जन्म, किंतु मृग शिशु के जन्म में पूर्व जन्म की बात उनको स्मरण था इसलिए वो बहुत सतर्क हो गए दूसरे जन्म में। और पर्वत जन्म में वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो एक गलती के कारण एक भूल के कारण क्योंकि संग दोष उत्पन्न हो गए भरत महाराज, तो इसलिए कहते हैं दुसंग दोषं भरतादयो यथा। ये दुसंग दोष के कारण भरत महाराज आदि इस दुर्गति को प्राप्त हुए। तो कोई यदि प्रश्न करेगा कि भरत महाराज जिसने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपना परिवार राज ऐश्वर्य त्याग दिया था तो उनकी इस प्रकार अवस्था कैसे होगी, भगवान ने उनको क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं की, भगवान के लिए उन्होंने सब त्याग दिया था। और यदि इस प्रकार वो आसक्त हो भगवान का ये कर्तव्य है उनकी रक्षा करना है, किंतु भगवान भरत महाराज को व्यवहार कर रहे हैं संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि संग दोष का प्रभाव कैसा होगा। हम जिस प्रकार के व्यक्ति का संग करेंगे हम उसी प्रकार बन जाएंगे। हम एक भोगी विषय व्यक्ति का संग कर रहे हैं, यदि कोई त्यागी व्यक्ति भी जो त्याग में जीवन व्यतीत कर रहा है किंतु कोई भोगी व्यक्ति का स्नान करेगा विषय व्यक्ति का स्नान करेगा तो क्या होगा, वो त्याग को छोड़कर भोगी बन जाएगा। कोई अच्छा व्यक्ति कोई मध्यम व्यक्ति का स्नान कर रहा है वो मध्यम बन जाए, इस संग दोष का प्रभाव। तो सारे जगत को ये शिक्षा देने के लिए कि हमें कितना सतर्क रहना है, संग दोष से बचना है, ऐसे व्यक्तियों का संग करना है यदि हम भक्ति मार्ग में अग्रगति करना है। तो जो एकमात्र भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है उनकी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, भोग की अभिलाषा नहीं, ऐसे व्यक्तियों का स्नान करने से ऐसे भक्तों का स्नान करने से हम भी उस प्रकार वैराग्य संपन्न हो जाए। और यदि ऐसे भक्तों का स्नान कर रहे हैं जो खाने पीने में कोई सहमता नहीं है, जो सोने में सहमता नहीं है, आचार व्यवहार में सहनता नहीं है, हर समय भोग की लालसा बनी हुई है, ऐसे भक्तों का संग करें हम भी भोली बन रहे हैं, उन्हीं के समान हो जाते हैं। तो ये संग दोष का जो प्रभाव है ये भरत महाराज के चरित्र में भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं, अर्थात अपने भक्तों को व्यवहार कर रहे हैं। बैकुंठ के आदिवासियों की दृष्टि से वस्तुतः भरत महाराज निर्दोष है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य ये था भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनको प्राप्त करना, और उन्होंने जो मृग शिशु की रक्षा की ये केवल भगवान के गुण के कारण, क्योंकि भगवान दयालु हैं, दूसरों का दुख देख नहीं सकते, इसलिए भगवान के भक्त होने के कारण भरत महाराज भी बहुत दयालु थे, और उनकी आंखों के सामने वो देख रहे थे कि शिशु का तुरंत जन्म हुआ और वो जल में गिरा, झरने के जल में गिरा और बहता हुआ जा रहा है, किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसको देखकर उनसे रहा नहीं गए, क्योंकि बहुत कृपालु थे, इसलिए जाकर उसको उठा लिया, और उसको उठा लेने के पश्चात फिर उसकी रक्षा के लिए सचेत हो गए। तो इसलिए वैष्णव भगवत पार्षद ग्रहण कर रहे हैं कि ये भरत महाराज की दयालुता ही कृपापूर्ण स्वभाव है, जिस प्रकार भगवान कृपापूर्ण है इस प्रकार उनके भक्त भी कृपापूर्ण हो, इसलिए दूसरे जीवों का दुख देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने शिशु मृत शिशु की रक्षा की और उसके लालन पालन में समय व्यतीत किया। किंतु इससे यही शिक्षा हमें प्राप्त होती है कि संग दोष से हमारा पतन भी हो सकता है, हम आध्यात्मिक पतन, हम यदि अच्छा संग नहीं करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक पतन हो सकता है। कभी भी हमें भगवान का स्थान नहीं लेना चाहिए, हमें सदा सर्वदा भगवान के ऊपर निर्भर से रहना चाहिए और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऐसे भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भरशील रहता, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, तो भक्त को सदा सर्वदा भगवान के ऊपर निर्भरशील रहना, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा कोई नहीं कर सकता, तो ये शिक्षा देने के लिए भरत महाराज को व्यवहार किया है भगवान ने, संग दोष की शिक्षा। दुर्दीप्त दोषं च युधिष्ठिर और सौगी भूमि की बात भी इसी में आती है, मछलियों का संघ के कारण उनका भी पतन हुआ, और दूसरा द्वित क्रीड़ा का जो दोष है ये युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भगवान ने दिखाया कि द्वित क्रीड़ा का क्या परिणाम होता है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भगवान ने दिखाया सारे जगत को कि द्वित क्रीड़ा के कारण युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य खो दिया, अपनी पत्नी को भरी सभा में उल्लग्न होने दिया और स्वयं अपने भ्राता और पत्नी के साथ उनको वन में विचरण करना पड़ा, ये दीर्घ क्रीड़ा के कारण जीवा खेल के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन से ये शिक्षा देते हैं भगवान सारे संसार, इससे बचना है, जीत पीड़ा से बचना है, भौतिक आसक्ति से बचना है यदि हम भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं। पुनः कहते हैं ब्रह्मस्य भीतिं च नृगादयो भवान्। और महाराज नृग के उदाहरण से, क्योंकि महाराज नृग दान देते थे ब्राह्मण, तो दान देना कोई खराब कार्य नहीं है, ब्राह्मण को दान देते थे, किंतु उनसे एक गलती हो गई। जिन गौओं को उन्होंने एक बार एक ब्राह्मण को दान दिया था, ऐसे कई ब्राह्मण थे उनको गौए दान में दे रहे थे, तो वो ब्राह्मण के हाथ से गौए छूटकर जो गौए ये दान में दे रहे थे उनके साथ मिल गए ये गौए, तो उनको दूसरी बार उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। और शास्त्र में बताया गया है कि एक बार दान देने के पश्चात उसको कभी भी लौटा कर नहीं लाना चाहिए, लेना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कलयुग में, दान देते हैं और फिर ले लेते हैं छीन कर। तो नृग महाराज की अवस्था क्या हुई, नृग महाराज को पता चला, उन्होंने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि ठीक है इसको हमने दे दिया दूसरे ब्राह्मण को, आपको दूसरी गांव में दे रहा, किंतु उस ब्राह्मण ने मना कर दिया, नहीं हमें तो वही गांव ही चाहिए, जिसके कारण महाराज नृग को क्या करना पड़ा, सिद्ध कर ली। तो भगवान कृष्ण ने गिरगिट किया चित्कल जो भी कर, तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको मुक्त किया था। तो महाराज नृग बहुत बड़े दानी थे, किंतु ब्रह्मस्व हरण का दोष लग गया, जिसके कारण उनको ये जन्म लेना पड़ा। तो इनके माध्यम से प्रादर्शयन स्व व्यवहार को जाना। तो ये सब महान भक्तगण अपने व्यवहार से सारे संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार इन दोषों से व्यक्ति दुख भोग कर सकता है। भक्ति प्रभाव एवं विचार रहते ही संजाय माने न सदा इंद्र से विघ्नाति विघ्नान किल वैश्य सर्वकृते हंस भयं साय। तो ये वैकुंठ के दुर्गम कह रहे हैं कि तुम्हारी इस भक्ति के प्रभाव से, गोप कुमार से बता रहे कि आपके इस भक्ति के प्रभाव से आपको तरह तरह का अनुभव होगा। आप ये जो नाम संकीर्तन मूलक से भक्ति आचरण करेंगे, इसके द्वारा आपको तरह तरह के अनुभव होंगे, आध्यात्मिक अनुभव। और उसके साथ समझा माने सदा इद्र से इतम विघ्नाति विघ्नान किल वैश्य। और भक्ति मार्ग में, क्योंकि भौतिक संसार में भक्ति मार्ग में भी बाधाएं उत्पन्न होती है, तो ये वैकुंठ के अधिवासीगण आश्वासन दे रहे हैं गोप कुमार को कि आप विघ्नाति विघ्न, विघ्न से बड़े विघ्न जो भी सामना करेंगे, विघ्न आएगा जीवन में, ये नहीं कि हम भक्त बन गए तो कोई विघ्न नहीं आएगा, विघ्न आएगा किंतु हम उसको पार कर सकते हैं। कैसे, भगवान के पास। तो ये वैकुंठ के दुर्गम कह रहे हैं कि आपके साथ भी विघ्न आपके पास आएगा इस भक्ति के अभ्यास के समय, किंतु हम आश्वस्त करते हैं आपको कि जितने भी विघ्न आएंगे आप उसमें जययुक्त हो, आप विजयी हो उन विघ्नों, विघ्न आपकी भक्ति में बाधा नहीं डाल सकते। और हम और आश्वस्त कर रहे हैं आप उस विघ्न में विजयी होंगे और हम लोग सदा सर्वदा आपकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं वैकुंठ के देवता। तत् मानेन शिवस्य आज्ञां इतानिशार सत्तर, इसलिए अब आप शिव जी की आज्ञा का पालन कीजिए। शिव जी ने आज्ञा दी थी गौ कुमार को कि स्थान जल्दी परित्याग करो और ब्रजभूमि में जाओ, तो वैकुंठ भी वही कह रहे हैं कि आप शिव जी की आज्ञा का अनुसरण करके निशा सत्वर इस स्थान से अति शीघ्र आप चले जाओ। कृष्ण प्रियतमान श्रीमद मथुरांकन ममामा, और कहां आप जाएंगे ना भगवान कृष्ण के जो प्रियतम स्थान मथुरा ब्रह्मांड जिसका हम नमन करते हैं वैकुंठ विग्रह कहते हैं, उस मथुरा या ब्रजभूमि का हम नमन करते हैं, तो आप उसी स्थान पर जो भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय है आप उस स्थान पर जाइए, अति शीघ्र जाइए। तो जब इस प्रकार वैकुंठ के अधिवासियों ने कहा गौ कुमार से तो गौ कुमार राजी हो गए, राजी होकर अब जाने के लिए उद्यत हो रहे। तो जाने से पहले वो प्रणाम कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने शिव और पार्वती को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और जो वैकुंठ के आदिवासी गण थे आए हुए थे उनको भी दंडवत प्रणाम किया। तो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अर्थात भूमि पर लेटे हैं दंडवत प्रणाम करते हुए। अब जब सब ऊपर उठाते हैं देखने के लिए उन लोगों को, देखते हैं कि वो उस स्थान पर नहीं, तो कहां पर है ब्रजमंडल में आकर एक क्षण भी नहीं लगा कि ये ब्रजमंडल में आकर पहुंच गए कहां से, मुक्ति धाम से महाकाल से, इतनी तीव्र गति से कि प्रणाम कर रहे हैं माथा उठाकर देखते हैं तो ब्रजमंडल में, तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव हो, हम कितना परिश्रम करके ये स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक और ये ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके भक्ति मुक्ति धाम महाकालपुर में पहुंचे थे, कितना कष्ट करके और कितना समय लगा, अब एक मुहूर्त में हम मुक्ति धाम से आकर ब्रह्मलोक, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए गौ कुमार। और आश्चर्यचकित होकर वो ब्रजमंडल के दृश्यों को देखा, मनोहर दृश्यों को देखा, ब्रजमंडल कितना सुंदर है, चारों ओर फल और पुष्प के वृक्ष छाए हुए हैं और पशु पक्षियों की कलरव है, तो बहुत आनंदित होकर गौ कुमार क्योंकि गोवर्धन के गौ थे गौ कुमार, इसलिए आनंदित होकर एक वन से दूसरे वन में भ्रमण कर रहे। इस प्रकार भ्रमण करते हुए गौ कुमार मथुरा में पहुंचे और मथुरा में कुछ ब्राह्मणगण जो भागवत शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उनके पास जाकर पहुंचे भागवत का पाठ चल रहा था तो वहां बैठकर सुने, भागवत का श्रवण किया लोक कुमार। और भागवत ने श्रवण किया जो नर्मदा भक्ति के बाद बैकुंठ के अधिवासियों ने बताया बताई थी गोप कुमार, तो वही भागवत में भी उल्लेख है नर्मदा भक्ति की बात कही जा रही है। उन्होंने श्रवण किया और अब भागवत विधि के अनुसार भक्ति आचरण करने के लिए वो प्रवृत्त हो। अभी तक गोप कुमार केवल मंत्र जप करके जा रहे थे एक लोक से दूसरे लोक, तो भक्ति विधि का आचरण नहीं किया। अब भागवत से श्रवण करने के बाद और जो वैकुंठ के दूतगण इस प्रकार उन लोगों ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रारंभ किया। तो नाम संकीर्तन रूपक जो भक्ति है उसका प्रारंभ किया। तो आज तो समय हो गया है, कल हम श्रवण करेंगे, कल इस सत्र का अंतिम दिन है, तो कल हम श्रवण करेंगे कि गोप कुमार ने उसके बाद क्या किया। हरे कृष्ण। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। हरे कृष्ण
Thank you.
Yeah.